नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। आज सुबह 5:59 पर कामजोंग में रिक्टर स्केल पर 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके गुवाहाटी, ईटानगर और उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में महसूस किए गए। जनगणना 2027 के लिए गणनाकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पापुमपारे जिले में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के बीरी ताका ने BWF चेकिया पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं जॉनी मांखिया ने 15 साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप 2026 में कांस्य पदक प्राप्त किया। सियांग अपर बहुउद्देश्य परियोजना के तहत रियू गांव के 17 परिवारों ने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट गतिविधियों के संचालन के लिए अतिरिक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, जमीन स्तर पर सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करने में सिविल सेवाओं की अहम भूमिका। भारत और जर्मनी स्मारक सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम कल समाप्त हो रहा है। हॉर्मुज बंदर मध्य में तनाव के कारण वार्ता को लेकर अनिश्चितता। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह 5:59 पर कामजोंग के रिक्टर स्केल पर 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके गुवाहाटी, ईटानगर और उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में भी महसूस किए गए। हालांकि अब तक किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई तत्काल सूचना नहीं मिली है। जनगणना 2027 के लिए गणनाकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कल से अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले में शुरू हुआ। ये प्रशिक्षण बालिजान, दोईमुख और सागाली उप विभागीय मुख्यालयों में विकेंद्रीकृत तरीके से आयोजित किया जा रहा है। बालिजान में बालिजान और सांगदुपोता सर्कल के प्रतिभागी शामिल है। दोईमुख में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए सत्र आयोजित हो रहे हैं, जबकि सागाली में सागाली शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों तथा तोरू सर्कल के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में बालिजान में 29, दोईमुख में 32 और सागाली में 50 गणनाकर्ता एवं पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण का दूसरा चरण 23 अप्रैल से सागाली, बालिजान और किमिन में शुरू होगा, जबकि घर घर जाकर गणना 1 मई 2026 से शुरू की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के बीरी ताका ने BWF चेकिया पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। ये प्रतियोगिता गत 14 से 19 अप्रैल तक प्राग में आयोजित की गई थी। बीरी ताका ने पुरुष एकल SL4 वर्ग में विश्व रैंकिंग के 16 स्थान पर जर्मनी के नील्स बोइनिंग को हराकर पहला स्वर्ण प्राप्त किया। दूसरा स्वर्ण उन्होंने पुरुष युगल SL3 SU5 वर्ग में हासिल किया है। इसके अलावा मिश्रित युगल SL3 SU5 में कांस्य पदक भी जीता। पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में उन्होंने 6 बार के यूरोपीय खेल पदक विजेता रिकॉर्ड नील्स को भी पराजित किया है। वही जॉन मांखिया ने 15 साइलेंट नाइट इंटरनेशनल कराटे कप 2026 में कांस्य पदक प्राप्त किया। हाल ही में क्वालालंपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन, जिसमें 5वीं के IO राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी शामिल है, जिसके आधार पर उन्हें 24 से 26 अप्रैल 2026 तक स्पेन में होने वाली वर्ल्ड कराटे 1 सीरीज में भाग लेने का और भारत को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। अरुणाचल प्रदेश में सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट SUMP के तहत जारी प्रयासों के क्रम में रियू गांव के 17 परिवारों ने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट PFR गतिविधियों के संचालन के लिए अतिरिक्त समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले 62% परिवार राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिससे प्रस्तावित 11,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं के PFR कार्य शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करने में सिविल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा है कि योजनाएं भले राजधानी दिल्ली में बनाई जाएं, लेकिन दूरदराज के गांवों में सार्थक परिणाम तभी मिलते हैं जब उन्हें सही मायने में लागू किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का सूत्रधार बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने सेवा और एकता की भावना से राष्ट्र को एकजुट किया। इस अवसर पर केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है।
पिछले 12 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला है, देश में एक बड़ा बदलाव आया है। ये परिवर्तन व्यक्तिगत स्तर पर सेवाओं के वितरण से परे उनमें संस्थागत सुधारों को दर्शाता है। ये बदलाव नियम से हटकर भूमिका की ओर है। साथ ही ये परिवर्तन प्रशासन केंद्रित शासन से हटकर नागरिक केंद्रित शासन की भावना को मजबूत करता है। आप सभी को याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही समय बाद अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार का मंत्र दिया था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जर्मनी की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर म्यूनिक पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस यात्रा के दौरान श्री सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिटोरियस और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। इसमें मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच सामरिक रक्षा भागीदारी और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम कल शाम समाप्त हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच नए सिरे से वार्ता की संभावना और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम में विस्तार को असंभव बताया है। उन्होंने कहा है कि कोई समझौता नहीं हुआ तो संघर्ष विराम के बाद हमले फिर शुरू हो जाएंगे। अमेरिका सूत्रों के अनुसार पहले दौर में वार्ता का नेतृत्व करने वाले उपराष्ट्रपति जेरी वेंस बातचीत के लिए आज इस्लामाबाद जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी शर्तों पर बातचीत का संकेत देते हुए कहा कि अगर कोई सफलता नहीं मिलती है तो वो ईरान के वरिष्ठ नेताओं से मिलने को तैयार है। हालांकि ईरान की ओर से मिले जुले संकेत सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो रहा है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और बंगाल की पहले चरण में 152 सीटों के लिए मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास में जुटे हैं। एक रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दलों के नेता राज्य भर में आखिरी दौर के प्रचार में जुटे हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री शाह ने गोरखा समुदाय को आश्वासन दिया कि भाजपा के पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर गोरखा मुद्दे का समाधान किया जाएगा। भाजपा नेता रेखा गुप्ता आसनसोल में एक रोड शो में शामिल हुई। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित किया और बंगाल में भाजपा द्वारा कथित तौर पर फैलाए जा रहे झूठ को लेकर पार्टी पर तीखा हमला बोला। भाजपा के अमित शाह का पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर तथा पश्चिमी बर्धमान जिलों में भी जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज उत्तरी 24 परगना जिले और कोलकाता में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। कांग्रेस, वामदल और अन्य पार्टियां भी राज्य में अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाह की रिपोर्ट के साथ।
आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटन्स को 99 रनों से पराजित किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया है कि पश्चिमी बंगाल, गांगेय क्षेत्र और बिहार सहित देश के पूर्वी हिस्सों में भी लू चलने का अनुमान है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों लोहित एवं नामसाई के लिए ऑरेंज और अन्य 11 जिलों पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा, लोअर दिवांग वैली, अंजाव, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन सभी जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन्स सत्र 2 के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में कुल 2,50,182 अभ्यर्थी जेईई एडवांस के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 6.4% और 2027 में 6.6% की वृद्धि का अनुमान है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने कल जारी रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में 2025 में 5.4% की वृद्धि हुई, जबकि 2024 में 5.2% की ही वृद्धि हुई थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।